الحمد لله بكفاء، الحمد لله بكفاء، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے رابطہ شیخ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور مشائخ کا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ معمولات جو سلسلہ کے ہیں، ان معمولات میں سب سے اہم معمول رابطہ شیخ ہے. شیخ سے رابطہ ہے تو پھر تو معمولات کی پابندی کی امید رہے گی. شیخ سے رابطہ ہے تو باطن کی بیماریوں کی اطلاع ہونے کی ہمیں امید رہے گی. اگر رابطہ ہی نہیں، نیک مجلسوں میں ہی آنا جانا نہیں، نیک صحبت ہی نہیں، تو معمولات بھی ہاتھ سے جائیں گے، نیکی بھی ہاتھ سے جاتی رہتی. کل کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کی کہ کیونکہ یہ اصل معمول ہے، تمام معمولات کی بنیاد رابطہ شیخ ہے، شیطان اسی معمول سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے سالک کو. کبھی کوئی بات ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی بات ذہن میں ڈالتا ہے. جیسے کہ ایک مثال دی گئی کہ ایک سالک کے ذہن میں شیطان نے یہی ڈال دیا کہ جی وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، مجھ جیسا ناکارا ان کے پاس بیٹھنے کے کہاں قابل. اب یہ بھی شیطان کا ہی لین ہے کہ میں اتنا ناکارا ہوں، میں ان کے پاس ہی نہ جاؤں تاکہ اور ناکارا بن جاؤں. تو کئی مرتبہ سالک کے ذہن میں شیطان یہ بھی ڈالتا ہے کہ آج کل معمولات نہیں کر رہا تو حضرت کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو اس لیے جب معمولات صحیح ہو جائیں گے نا تو پھر جاؤں گا. تو شیطان مختلف طریقوں سے سالک کو شیخ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عجیب و غریب وساوس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو مشائخ نے لکھا کہ شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری کہ سالک شیخ کے پاس آنا جانا رکھے، رابطہ رکھے، اور آج کے زمانے میں رابطہ آسان ہے. اور کل کی مجلس میں دوسری بات ہم نے یہ کی کہ سالک اپنے شیخ کے بارے میں اعتقاد بلند رکھے. مشائخ نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے لیے انفع سمجھے، سب سے زیادہ نفع سمجھے، اور اچھا گمان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. شرعی اصول یہی ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا گیا کہ وہ فرماتے تھے اس دنیا میں میرے شیخ سے بہتر کوئی شیخ نہیں. تو یہ دلیل والی بات نہیں تھی، تو تمام مشائخ کا جائزہ حضرت نے نہیں لیا تھا، یہ گمان تھا. اور فرماتے میرے اس گمان پہ اللہ نے مجھے دین کی تجدید کے کام کے لیے قبول فرمایا. آج کی اس مجلس میں مشائخ کے آداب سے متعلق ایک بات عرض کرنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ سالک جو ہے وہ بیک وقت مختلف مشائخ سے تعلق نہ رکھے، صرف ایک ہی شیخ سے تعلق رکھے. آج کل کے سائنسی اور میتھمیٹیکل دور میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی اگر میرے شیخ کی صحبت میں میں آؤں گا اور ہو سکتا ہے 10-12 سال میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، تو اگر ایسے دو مل جائیں تو شاید 6 سال میں میں اللہ کا مقرر بن جاؤں. تو میتھس تو یہی کہتی ہے کہ اگر ایک شیخ کے ساتھ 12 سال میں اللہ کا مقرب بنوں گا तो दो हो जाएं बयक वक्त, तो हो सकता है 6 साल में अल्लाह का मुकर्रम बन जाऊंगा। मगर इस ताल्लुक में और इस लाइन में, इस इस्लाह की लाइन में मैथमेटिक्स नहीं चलती। मशायख ने तो फरमाया कि जो शख्स बयक वक्त दो शेख रखता है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जगह पे दाखिल होना चाह रहा है मगर दो दरवाजों में से एक साथ दाखिल होना चाह रहा है। तो किसी भी एक जगह पे दो दरवाजों में से एक साथ दाखिल नहीं हो जाता है, फिर तो एक दरवाजे में से भी नहीं जाएगा। अगर दोनों दरवाजों में एक साथ अंदर दाखिल होना चाह रहा है तो कहीं से भी अंदर दाखिल ही नहीं हो सकेगा, तो फेल होगा ऐसा साले। या मशायख ने इसकी मिसाल ये दी कि जो शख्स दो मशायख या एक से ज्यादा मशायख रखता है, उसकी मिसाल ऐसी है जो सफर कर रहा है और चाहता है कि मैं दो घोड़ों पे एक साथ सफर करूं। तो दो तगड़े घोड़े क्यों ना हो, एक साथ सफर करेगा तो नीचे गिरेगा ही सही, और एक लागिर घोड़े पे भी सफर करेगा, सुस्त रफ्तार घोड़े पे भी सफर करेगा तो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसलिए एक वक्त में एक शेख से ही ताल्लुक रखना ये जरूरी है, उसी शेख को अपने लिए सबसे नफा बख्श समझना जरूरी है, अपने हालात तो मामूलात तो मशवरे उसी एक शेख से करना जरूरी है, ये उसूल है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज दिल हुआ तो यहां बैत कर ली, कल किसी बुजुर्ग का बयान सुना वो अच्छे लगे तो वहां बैत कर ली, फिर तीसरे दिन किसी और जगह गए और वहां कोई नेक शख्स मिल गया तो वहां बैत कर ली। तो शैतान जो है वो नेक लोगों को यूं गलत रास्ते पे डालता है कि जी ठीक है, बदगुमान किसी के बारे में नहीं हो रहा मगर खुशगुमान भी इतना ना हो कि भाई हर तरफ ही बैत किए जा रहे हैं। और खुशगुमान होना अच्छा है, हर एक को बुजुर्ग समझने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ताल्लुक, ये जो इस्लाह का ताल्लुक है, ये एक ही जगह होनी चाहिए। हर एक से ताल्लुक रखेंगे तो कोई भी आपको सही तरह से नहीं जान सकता, एक से ताल्लुक रखेंगे तो वो आपको एक सही तरह से जानेगा। और अकल यही कहती है कि जो सही तरह से जानेगा आपको वही आपकी सही तरह से इस्लाह करेगा। किताबों में वाकया लिखा है कि हमारे कराची के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सैयद जब्बार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात का बेहतरीन तर्जुमा, सबसे बेहतरीन तर्जुमा इस आजिज की नजर में या बहुत सारे और मशायख की नजर में भी उन्होंने ही फरमाया है उर्दू जबान में। और इसी तरह तसव्वुफ की एक बहुत ही अहम किताब उम्दतुस सुलूक भी हजरत ने ही तहरीर फरमाई। इसी तरह फिका पे भी सबसे ज्यादा जुजियात वाली जो किताब है उर्दू जुबान में वो उम्दतुल फिका ही है जो हजरत ने तहरीर फरमाई। तो बड़े आलिम दीन भी थे और बड़े अल्लाह वाले भी थे, और इस शहर पे अल्लाह की रहमत है कि वो यहाँ के थे। तो हजरत के हालात में लिखा है कि एक मरतबा अपने शेख के साथ हजरत मुजद्दिद अरफसानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज्यारत के लिए हाजिरी हुई, हजरत की कब्र पे हाजिरी हुई, और वहीं पे मदरसा और खानकाह बनी हुई है, तो रात वहां गुजारी। शेख के हमरा तशरीफ ले गए थे, रात वहां गुजारी। सुबह फजर की नमाज जब अदा की तो शेख ने कहा हजरत सैयद जवार हुसैन शाह साहब को कि यहाँ रात गुजारी, और रात को हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की जियारत हुई, और हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में फरमाया कि ये जो नौजवान आया है आपके साथ उसको यहाँ छोड़ जाए, आप बेशक तशरीफ ले जाए। अब ख्वाब तो ख्वाब है मगर जगह ऐसी थी ना, हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की जो खानकाह है उस पे आप एक रात गुजारने के लिए, अगर वहां ख्वाब एक रात में आ रहा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है।
अब शेख ने पूछा कि भाई क्या आपका मशवरा है, हमने तो आगे सफर पे जाना है बहुत सारे शहरों में, मगर अब यूं ख्वाब आया तो क्या आप ठहरना चाहेंगे या क्या आपका मशवरा है, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया हजरत आपका हुक्म होगा तो यहाँ ठहर जाएंगे, और अगर आप मशवरा मांग रहे हैं तो सही है, हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैहि की खबर यहाँ पे है, मगर हमारे मुजद्दिद तो आप ही हैं, आप ही के साथ चलना चाहेंगे। तो ये वाकया जो है ये एक नमूना है तमाम सालिकीन के लिए, क्योंकि एक वक्त में सारी अकीदत, सारे हालात, सारा कुछ एक ही शेख के साथ होगा तो सबसे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेंगे, वरना ब्रेक लगेगी। और जो सालिक बहुत सारे मशाइख से ताल्लुक रखता है ना, वो मशाइख को कंपेयर कर रहा होता है कि जी नहीं ये तो ज्यादा लंबी तहज्जुद पढ़ते हैं, तो ये तो ज्यादा जिक्र करते हैं, तो इनका इल्म बड़ा अच्छा है, तो ये इल्म में बड़े कमजोर हैं, इनकी औलाद बड़ी नेक है तो इनकी औलाद नेक, ये सारी कंपैरिजन शुरू हो जाती है ना। तो इसलिए जब ये कंपैरिजन करेगा तो बेअदबी का मुर्तकिब होना ही होना है, इसलिए एक वक्त में एक ही शेख के साथ ताल्लुक रखें। इसलिए अक्सर मशाइख आप उनके पास जाएंगे वो कहेंगे भाई अगर पहले से कहीं बैठो तो उधर ना हो, उधर उसके साथ ताल्लुक सही करो। इस आजिज ने हजरत मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की बैत की एक तकरीब जो है, हजरत का इंतकाल इस आजिज के पैदा होने से पहले हो गया, मगर बैत की एक तकरीब की एक ऑडियो सुनी। मक्का मुकरमा के बड़े बुजुर्ग हजरत के खलीफा हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड में खड़े होके हजरत की बैत का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हजरत का बयान हुआ, जो लोग बैत होना चाहें बैत कर लें। हजरत ने बैत से पहले माइक में फरमाया हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई जिसका पहले कहीं बैत से ताल्लुक है वो सिर्फ तौबा की नीयत से कलिमात पढ़े, बैत की नीयत ना करे। कि एक वक्त में एक ही शेख से बैत होते हैं, तो इसलिए जहां अकाबरीन ने हमें और चीजें सिखाई, ये भी एक सीखने वाली चीज है, ये भी एक अहम चीज है। अल्लाह ताला हमें अपने मशाइख की कदर करने की, उनसे फैजियाब होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.